الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم حقوق والدین کا موضوع پڑھ رہے ہیں، تسہیل بہشتی زیور میں سے، جو کہ اصلی بہشتی زیور میں سے ہی لیا گیا ہے. یعنی اصلی بہشتی زیور کیوں کہا؟ کیونکہ اصلی بہشتی زیور جو تھی نا، وہ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف شدہ تھی. تو انہوں نے اپنے بہشتی زیور کتاب کے اندر آخر میں یہ حقوق والدین کا ایک ضمیمہ، یعنی ایک ایڈیشنل ٹاپک جو ہے نا، وہ رکھا، اگرچہ کہ شروع میں حقوق کے تحت والدین کے حقوق کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی تھی، لیکن ایک بار پھر آخر میں دوبارہ سے اس ٹاپک کو لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، اور اس ٹاپک کے آغاز میں حضرت نے قرآن مجید کی یہ والی آیت نقل فرمائی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عمومی طور پر جب والدین کی بات ہوتی ہے تو اس آیت کا ذکر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ والدین کے لفظ کی صراحت کے بجائے، یہ آیت جو ہے وہ حق والوں کی امانت کی ادائیگی کے حکم سے متعلق ہے، کہ جن کا تمہارے اوپر حق آتا ہے تو ان کے حق کو ادا کرو، یہ تمہارے پاس ان کی امانت ہے. ٹھیک ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس کوئی اپنی امانت رکھواتا ہے تو یہ امانت اس کا حق ہوتی جو کہ اس کو لوٹانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑتی ہے یا جب لوٹانے کا وقت ہوتا ہے تب امانت لوٹانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور آپ نے جو ہے نا وہ اسی وقت اس کے منہ پہ دے ماری، نہیں مجھے نہیں، مجھے تمہاری امانت نہیں رکھنی ہے، مجھے تمہاری امانت نہیں چاہیے، لو اپنے پاس واپس رکھو، یہ تو نہیں ہوتا نا. بلکہ آپ اس سے امانت لے کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور کب واپس کرتے ہیں؟ جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے، یا جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا جب واپس کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت آپ واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے حقوق جو ہے وہ انسانوں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ایسے ہی ہیں کہ جب جس کا حق ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے کا وقت آتا ہے، تب وہ حق ہمیں اسے ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بالکل امانت والا ہی یہ معاملہ ہے، حقوق والا معاملہ. ٹھیک ہے، اب اس میں پچھلی کلاس کے اندر یہ بات ہوئی تھی، یہ جو والدین کا معاملہ ہے یہ انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ حقوق کے معاملے میں ایک انتہائی مشکل معاملہ ہے. تو اس کی کیا کیا آپ کو وجہ بتائی تھی کہ یہ انتہائی سینسیٹیو یا انتہائی مشکل معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے، یاد ہے کسی کو، یا کسی نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے تو وہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ والدین کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی، والدین کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، والدین ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں، ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں کہ جن کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، اور انہی کو دیکھتے ہوئے آپ نے یعنی عمر گزاری ہوتی ہے، تو ایک بہت شدید قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ. تو اب ان کے معاملے میں جو ہے نا پھر بہت زیادہ افراط ہو جاتا ہے. افراط، ویسے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا افراط اور تفریط ठीक है, लेकिन वालिदैन का मामला ऐसा है कि तफरीद की नौबत तो बहुत बाद में और कम ही आती है। तफरीद, तफरीद कहते हैं कि जितना ड्यू है ना उससे कम देना किसी को, इसको तफरीद कहते हैं, कमी। ठीक है ना, तो वालिदैन के मामले में कमी का मामला जो है ना वो कम होता है, इफरात का मामला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कमी का मामला वालिदैन में कम क्यों होता है? इसलिए कि वालिदैन जो है वो बड़े होते हैं, उनका कंट्रोल होता है, उनके पास जो है वो पोजीशन होती है, अथॉरिटी होती है, जोर होता है उनके पास, तो औलाद के लिए इतना आसान नहीं होता कि उनके हक के अंदर कमी करें। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, इसलिए कि वालिदैन का हाथ जो होता है ना वो जबरदस्त होता है, वो ऊपर होता है उनका हाथ। ठीक है, तो उनके हक में कमी करना ये औलाद के बस में इतना नहीं होता। बाद में जाकर के जब औलाद बड़ी होती है और वालदेन ने अपने पाँव पर खुद से कुल्हाड़ियां मारी भी होती हैं, राइट, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी कोई मार ले तो फिर अब उसका क्या किया जाए? ठीक है ना, तो जब अपने पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली होती है, अपने आप को जो है उन्होंने गंदा कर लिया होता है, तब औलाद जो है वो उनके हुकूक के अंदर तफरीद करती है, यानी कमी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बेगम साहिबा आ जाती हैं, तो आमतौर पर फिर बेगम साहिबा के आने के बाद फिर वालदेन के हुकूक के अंदर तफरीद करती है औलाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो वालदैन सवार होते हैं ना, वालदैन का जो है वो अपर हैंड होता है, तो उनकी हक में तफरीद करना औलाद के लिए आसान नहीं होता। तो इस वजह से वालदैन के मामले में इफरात ज्यादा होता है। इफरात का मतलब जितना ड्यू है उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा, यानी उनको हक जो है वो रसूल से भी ज्यादा देते हैं, उनको हक जो है वो अल्लाह से भी ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो यही बात आखिरी क्लास के अंदर भी हुई थी कि वालिदैन के साथ जज्बाती लगाव की वजह से ये बहुत मुश्किल मामला होता है कि इनको उनके मुकाम पे रखा जाए। और आखिरी बात क्या करी थी ये भी अगर आपने कोई बता दे, एक और बहुत अहम बात आखिरी क्लास के अंदर हुई थी, इसके अलावा एक और बहुत अहम बात आखिरी क्लास के अंदर हुई थी, वो क्या? मुझे अभी याद आ गई है, तो अब आप तो आपसे पूछना पड़ेगा उसको। जी, क्या माजी से एक बात करी थी, माजी से दलील दी थी इसकी, जी वो क्या थी? इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करे बगैर कुछ नहीं। नहीं, ये पिछली क्लास की बात नहीं है, ये उससे भी पिछली क्लास की बात। पिछली क्लास के अंदर माजी से क्या दलील दी थी, माजी समझते हैं ना, पास्ट। जी, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज के अंदर डरते डरते जवाब लिखा है के वालदैन ही थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बने थे, राइट? वालदैन ही तो थे कि जो कि नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते में रुकावट बने थे। किनके वालदैन? नबी अलैहिस्सलाम के वालदैन नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया था ना, वालिद साहब का जो है वो पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया, वालदा का जो है वो 6 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। किसके वालदैन रुकावट बने थे? सहाबा के वालदैन रुकावट बने थे, राइट? कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाना चाहते थे उनको उनके वालिदैन रोकते थे, ठीक है ना, और हत्ता के मारपीट पर भी उतर आते थे। और जो है वो ये कौन, अभी सीरत क्लास के अंदर हमने हुदैबिया का वाकया पढ़ा ना, तो हुदैबिया के वाकये में वो जो हजरत अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्ह नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले आए थे, तो उनको उनके बाप सुहेल ने, तो बाद में जाकर के मुसलमान हुए थे, तो सुहेल ने जो है वो जंजीरों से बांध करके रखा हुआ था, जंजीरों से, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहते थे मदीना तैयबा हिजरत करके, लेकिन बाप नहीं चाहता था कि जाए, तो बाप ने, सगे बाप ने जंजीरों में जकड़ करके उसको रखा, उनको रखा हुआ था। ठीक है ना, फिर वो हुदैबिया के मौके पर किसी तरीके से खोल खाल करके जो है वो पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो बाप ने फौरन वापस डिमांड किया कि नहीं, मैं हुदैबिया का मुआहदा तय ही नहीं करूंगा, इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं करूंगा जब तक अबू जुंदल को वापस नहीं किया जाता। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया था उस वक्त। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा रिविजन करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि किताब में हम पढ़ रहे थे, निशान नहीं लगाया कि कहाँ तक एग्जैक्ट हमने पढ़ लिया था, कि ना वाकफियत, ये पेज नंबर 314 के दूसरी लाइन से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ कि नावाकिफियत की वजह से बाज लोग गैर वाजिब हुकूक को भी अपने जिम्मे वाजिब समझते हैं और उनकी अदायगी को अपना फर्ज समझते हैं, और फिर कभी ऐसा होता है कि उन्हें अदा नहीं कर सकते तो ख्वामख्वाह वसवसे में मुब्तला हो जाते हैं कि शरीयत के अहकाम में बिला वजह तंगी हो। ठीक है, यानी ये किन लोगों की बात हो रही है जो कि शरीयत के हुक्म को कुछ कुछ समझते हैं, शरीयत के हुक्म की कुछ उनके जहन में अहमियत है, लेकिन चूंकि उनका इल्म नाकिस होता है, उनका इल्म जो है वो यानी कामिल नहीं होता, नीम किस्म का इल्म होता है, नीम उल्ला, समझते हैं ना, वो एक हमारे उर्दू जुबान के अंदर एक कहावत मशहूर है ना कि नीम हकीम खतराए जान और नीम मुल्ला खतराए ईमान। ठीक है, तो अब जब हम ये बात करते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान, तो फिर हमारे जहन में क्या चीज आती है कि जो नीम हकीम होगा वो लोगों को गलत दवा देगा जिससे कि उनकी जान का खतरा हो जाएगा, और उसी तरीके से जो नीम मुल्ला होगा वो लोगों को गलत फतवा देगा, लोगों को गलत दीन बताएगा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से लोगों के दीन का नुकसान हो जाएगा, तो उनका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इससे भी आगे जा करके, इससे भी आगे जा करके भी इसकी हकीकत है कि जो नीम हकीम होता है वो सिर्फ दूसरों को गलत दवा नहीं देता बल्कि वो खुद भी गलत दवा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो इसकी वजह से वो दूसरों की जान का खतरा नहीं होता, वो अपनी जान को भी उसको खतरा होता है ना, अपने आप से खतरा होता है। उसी तरीके से नीमुल्ला का भी यही मामला होता है कि सिर्फ दूसरों का ईमान उससे खतरे में नहीं होता बल्कि उसका अपना ईमान भी उससे खतरे में होता है। ठीक है ना, जाहिर है गलत चीज को गलत, यानी जो सही चीज होगी उसको गलत समझेगा, गलत चीज को सही समझेगा, तो फिर उसका अपना ईमान खतरे में हो जाएगा, उसका अपना दीन खतरे में हो जाएगा। ठीक है, तो इस नाकिस इल्म की वजह से क्या होता है कि जो चीज शरीयत के अंदर वाजिब नहीं थी, तो दीनदार लोग, नीम मुल्ला है ना, तो नीम मुल्ला दीनदार लोगों को ही कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज वाजिब नहीं थी उसको वाजिब समझना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर जाहिर है जो अल्लाह ताला ने वाजिब नहीं किया तो वो तो फिर आप उसके ऊपर लाजमन अमल नहीं कर सकते ना। देखें, अल्लाह ताला ने सिर्फ उन चीजों को हमारे ऊपर वाजिब किया है जो कि हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला का उसूल है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअ, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स के ऊपर उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ठीक है ना, किसी नफ्स के ऊपर, ये मुतलक उसूल है, किसी नफ्स के ऊपर अल्लाह ताला उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो हमारे ऊपर जो चीजें अल्लाह ताला ने वाजिब वाजिब करी हैं या फर्ज करी हैं, तो ये क्या है, ये हमारे ऊपर बोझ है, ये हमारे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारी है हमारी, राइट? तो अगर हम उस जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते तो ये तो अल्लाह ताला के उसूल के खिलाफ हो जाएगा ना, कि हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल दी जो हम अदा ही नहीं कर सकते थे, तो ये तो अल्लाह ताला के उसूल के खिलाफ हो गया, ये तो जुल्म हो गया। ठीक है ना, तो भाई ये बोझ तो अल्लाह ताला ने वसत के हिसाब से डाला है, इसका मतलब क्या हुआ, आप बता दें, जल्दी से बताएं इसका मतलब क्या हुआ, कि जो बोझ हम उठा सकते हैं अल्लाह ताला ने वही बोझ हमारे ऊपर डाला है ना, उसको वाजिब करार दिया, उसको फर्ज करार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या चीज कंक्लूड होती है कि जी इससे क्या नतीजा निकलता है फिर? कि जो चीज वाजिब नहीं थी, जो चीज अल्लाह ताला ने वाजिब नहीं किया, ठीक है, तो वो ऐसी चीज है कि जिसको हर बंदा उठा नहीं सकता, जिसका हर बंदा मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो जो गैर वाजिब चीजें हैं, जो नफली चीजें हैं, जो मुस्तहब चीजें हैं, हर बंदा उनका उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ वही बोझ हमारे ऊपर डाला है जिसका हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। तो जिस चीज को शरीयत में वाजिब नहीं करार दिया गया है तो वो चीजें उसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि हम जो है वो शदीद मोहब्बत में मुबतला हो जाएं, या हम जो है वो एक्स्ट्रा अपने ऊपर जो है ना वो मेहनत करके अपनी ताकत को बढ़ा लें, तब तो हम एक्स्ट्रा चीजों के मुतहम्मिल हो सकते हैं, वरना हम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अब किसी चीज ने अगर गैर वा किसी इंसान ने अगर गैर वाजिब को अपने ऊपर वाजिब कर लिया, गैर वाजिब को वाजिब समझना, अपने ऊपर वाजिब नहीं कर लिया, बल्कि इस तरह से कहना चाहिए कि गैर वाजिब को वाजिब समझना शुरू कर दिया, तो अब वो गैर वाजिब के ऊपर तो नहीं अमल कर सकता ना, क्योंकि उसकी इस्तेदात ही इतनी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसकी इस्तेदात बनाई नहीं थी इतनी, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसकी इतनी इस्तेदात बनाई ही नहीं थी, तो अब ये कैसे करेगा उसके ऊपर अमल, ये तो गैर वाजिब चीज थी, उसके ऊपर तो ये अमल कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि आप अमल नहीं कर पा रहे होते, आप अमल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इससे फिर क्या होता है, इंसान फेल होता है, नाकाम होता है, इंसान नाकाम होता है, और जब नाकाम होता है तो नाकामी के नतीजे में उसके दिल के अंदर मायूसी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होती है, ठीक है ना। जब वो कोई काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता, तो इससे उसको डिप्रेशन और मायूसी मिलती है, और ये नफसियाती मर्ज होते हैं, ये चीजें क्या होती हैं फिर, ये नफसियाती मर्ज होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इल्म का सही होना ये लाजिम है, गलत फहमी का हो जाना, धोखे में पड़ जाना, इसके बहुत बुरे नतायज निकलते हैं, बहुत बुरे नतायज निकलते हैं इसके, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि उसको आखिरत में उसको गुनाह मिल रहा होता है, बल्कि इसकी दुनिया की जिंदगी भी खराब हो रही होती है, उसके नफसियाती हालात भी खराब हो रहे होते हैं, उसके जो है ना वो सेहत भी खराब हो रही होती है इसकी वजह से, ठीक है। तो सही इल्म हासिल करना, इसको अपनी जिंदगी का यानी हर्ज जान बनाए, इसको अपनी जिंदगी की नंबर वन प्रायोरिटी बनाए, इस इल्म को सही करना, गलत फहमी को दूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि बाज लोग गैर वाजिब हुकूक को भी अपने जिम्मे वाजिब समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ख्वाह मुखा वसवसे में मुब्तला हो जाते हैं कि शरीयत के अहकाम में बिला वजह तंगी होती है, इससे उनके दीन को नुकसान पहुंचता है, इसलिए हुकूक गैर वाजिबा में फर्क जरूरी है, ठीक है। या तो वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएंगे, या वो शरीयत के बारे में शक में मुब्तला हो जाएंगे, ठीक है, या ये कि अपने बड़ों के बारे में शक में मुब्तला हो जाएंगे कि बड़ों को जो है वो दीन का पता नहीं है, उन्होंने गलत चीज मुझे कहनी शुरू कर दिया है, और उनको एहसास नहीं है, और ये नहीं है वो, यानी वो किसी ना किसी के बारे में ना गलत फहमी में मुब्तला होंगे, बदगुमानी में मुब्तला होंगे, या तो दीन के बारे में, ठीक है ना, दीन के बारे में गलत फहमी में मुब्तला होने का मतलब, दीन के बारे में बदगुमानी में मुब्तला होने का मतलब क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी में मुब्तला होना, ठीक है ना, या वो दीन वालों के बारे में यानी उलमाए कराम के बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो अपने बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाएंगे। अपने बारे में बदगुमानी में मुब्तला होने को क्या कहते हैं, इसी को डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, इसी को नफ्सियात मर्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे हजरत ने फिर क्या किया कि जेल में वालिदैन के हुकूक की ताकीद और उनकी अदायगी के अहकाम कुरान और हदीस और फिकही इबारात की रोशनी में बयान किए जाते हैं, ठीक है, वालिदैन के हुकूक की ताकीद और उनकी अदायगी के अहकाम, यानी शरीयत में जैसे जैसा है ना वैसा वैसा बयान किया जाता है। तो अब इसमें जो है ना वो क्या किया है कि 1, 2, 3, 4, 5 पांच हदीसें बयान करी हैं, ठीक है ना, पांच हदीसें, ये वालिदैन की हुकूक की ताकीद के मुताल्लिक पांच हदीसें बयान करी, ठीक है। क्यों बयान करी है यहां पर ये वाली पांच हदीसें, उसकी वजह यही है कि इन हदीसों को और इस तरह की जो दूसरी हदीसें हैं उनको हमारे मुआशरे के अंदर, उनको हमारे मुआशरे के अंदर बे इंतहा अब्यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, अब्यूज करने का मतलब क्या होता है कि उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है उसका, ठीक है ना। और किस लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए कि वालिदैन के कहने को बस मानो, चाहे कुछ भी कहें, वो तुम्हारे वालदैन हैं, और देखो वालदैन के हुकूक जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे बयान किए, कैसे कैसे बयान किए, ठीक है ना। तो अब वालदैन की बात जो है वो हर हालत में माननी है, चाहे वो कुछ भी कहे मानने के लिए, ठीक है। तो अब जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा होता है औलाद को, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा होता है औलाद के ऊपर गलत काम करवाने के लिए, वालदैन के कहने के ऊपर, वालदैन के कहने पर गलत काम करने के लिए जो टॉर्चर किया जा रहा होता है ना औलाद को, वो इन हदीसों के गलत इस्तेमाल के जरिए से किया जा रहा होता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, इसका कोई ताल्लुक ईमान के साथ नहीं होता, इनका कोई ताल्लुक ईमान के साथ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ना तो इन वालदैन का अपना जो होता है वो ईमान पक्का होता है, अगर अपना इनका ईमान पक्का होता ना, जो कि इन हदीसों को अब्यूज करते हैं, तो वो ये काम ना कर रहे होते, ठीक है ना, वो ये काम ना कर रहे होते। और सोचने की बात है कि इवन औलाद का भी ईमान का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, कि औलाद के नजदीक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बात की बड़ी अहमियत है, राइट। तो नबी अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत जो औलाद के दिल में है, उस अहमियत को इस्तेमाल करते हुए वालदैन जो है वो अपना फायदा उठा रहे होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता। औलाद के दिल के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की बात की कोई अहमियत नहीं होती है, औलाद के दिल में भी कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से जो है ना, ये बस ये हथकंडे होते हैं, हथकंडे, ये नफसियाती हथकंडे होते हैं, ठीक है। इंसान को कोई भी चीज आप किसी के भी तरफ से बहुत ज्यादा यानी रिपीट कर करके, और बहुत ज्यादा जो है ना वो यानी एक खास लबो लहजे के साथ किसी भी बात को किसी के सामने जो है ना वो बहुत ज्यादा बयान करना शुरू कर दें, तो वो बंदा जो होता है ना वो प्रेशर में आ जाता है, वो बंदा प्रेशर में आ जाता है, ठीक है ना। यानी वालिदैन का ये सॉरी नबी अलैहिस्सलाम का नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का नाम लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये कह दें कि भाई वो फलाने क्या कहते हैं अरस्तु ने कहा था, ठीक है ना, अरस्तु। अब अरस्तु किसी को क्या पता, अरस्तु कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का क्या पता किसी को, और ना एरिस्टोटल की कोई अहमियत है किसी किसी के जहन में, पता ही कुछ नहीं कि ये यूनानी फलसफाई का अरस्तु जो है वो क्या चीज होता था। लेकिन आप किसी के ऊपर जो है ना वो देखो देखो अरस्तु ने कहा था, देखो देखो अरस्तु तक ने ये बात कही थी, देखो अरस्तु जो है ना वो, अब उल्टा सीधा आप बोलना शुरू करते हैं अरस्तु के बारे में और अरस्तु की बातों के बारे में, तो सुनने वाला प्रेशर में आ जाए, उसका अरस्तु के ऊपर कोई ईमान भी थोड़ी है, बस वो आपके लबो लहजे से और आपकी जो रिपिटिशन है ना उससे वो प्रेशर में आ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इन हदीसों को जो हमारे मुआशरे के अंदर गलत इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना माँ बाप का कोई ईमान होता है इनके ऊपर, और ना जो है वो औलाद का इनके ऊपर कोई ईमान होता है, बस एक हथकंडा हाथ आ गया है अपना फायदा उठाने के लिए, अपनी नफ्स परस्ती के लिए, अपनी काम निकालने के लिए। इसको कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है सियासत के अंदर, दीनी कार्ड इस्तेमाल कर, दीनी कार्ड इस्तेमाल कर, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं ना कि जी हाँ फलाने जो जो सियासतदान है ये दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को माइल करने के लिए, ठीक है ना, दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसके नजदीक दीन की नंबर वन प्रायोरिटी है, उसके जहन में दीन जो है वो नंबर वन प्रायोरिटी है पाकिस्तानी कौम के जहन के अंदर, क्या ख्याल है बताएं जरा मुझे, पाकिस्तान के जो जो जरा हैं खबरें देखने वाली खवातीन, क्या ख्याल है पाकिस्तानी आवाम के सामने दीन क्या नंबर वन प्रायोरिटी है? ऑफ कोर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये सियासतदान दीनी कार्ड कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? भाई दीनी कार्ड तो वहां पे इस्तेमाल करने की समझ में आती है ना, कि जहां पे लोगों के लिए नंबर वन प्रायोरिटी हो तो फिर वो दीन को अब्यूज करते हैं, यहां तो नंबर वन प्रायोरिटी है ही नहीं, तो फिर वो कैसे दीनी कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं? वो सिर्फ एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करते, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह सियासतदान दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह माँ बाप जो है ना वो भी दीनी कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने गल अपने यानी उल्लू उल्लू सीधा करने के लिए। समझ रही हैं? आप में से भी बहुत सारी करती हैं, मुझे भी पता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ बहुत आम है ये बात, दीनी कार्ड इस्तेमाल करना अपना मनफी मकसद निकालने के लिए, ठीक है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, इसी वक्त तौबा कर लें। अगर ऐसा ना हो कि क्लास खत्म करने होने से पहले पहले मौत का फरिश्ता आकर के जान निकाल करके चला जाए, और इसी हालत के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाना पड़े, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर आगे से पूछेंगे ना कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल करते थे, मेरे दीन का नाम इस्तेमाल करते थे ना अपने मजमूम मकासद के लिए, तो अब भुगतो जो मैंने तुम्हारे लिए अजाब रखा हुआ है, ठीक है। तो हदीसें हजरत ने वो वाली नकल करी है जिनको सबसे ज्यादा अब्यूज किया जा रहा होता है हमारे दीन के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, दीन में नहीं हमारे मुआशरे के अंदर अब्यूज किया जा रहा हो। तो पहली हदीस के जिसका तर्जुमा लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे निकाह में एक औरत थी, मैं उससे खुश था और उससे मोहब्बत करता था, मेरे वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उससे नाखुश थे। उन्होंने मुझसे फरमाया कि इस औरत को तलाक दे दो। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं उससे खुश था, तो मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये किस्सा जिक्र किया। कि किस्सा जिक्र करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे घर में, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने अपनी बहू के बारे में अपने बेटे को कहा कि उसको तलाक दे दो, और नबी और उसने इनकार कर दिया। तो ये उन्होंने आकर के वाकया सुना दिया। तो मुझसे यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत को तलाक दे दो, इस औरत को तलाक दे दो, ठीक है ना। अब आगे पढ़ने से पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया सुना या ऐसी कोई बात सुनी है कि माँ जो है ना वो, या बाप साहब जो है या माँ साहिबा जो है वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा मैं तो अगर हुक्म दूं ना कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो तुम्हें तलाक भी देनी पड़ेगी, तो तुम्हें तो अपनी बीवी को तलाक भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, ठीक है ना। तो जी इन्होंने जवाब दिया डायरेक्ट मैसेज में कि जी इन्होंने सुना है कोई ऐसा बात, ठीक है। तो हमने भी देखे हैं इस तरह के मामला, लोग करते हैं इस तरह की बातें, ठीक। तो अब इसकी जो है वो, जो इल्म वाले थे जिनको हमसे, हमारे मुआशरे से और हमारे दौर के मुसलमानों के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीबी नस्बत हासिल थी, ज़्यादा तफसीली उलूम हासिल थे, ठीक है ना, उन्होंने हदीसों को हमसे ज़्यादा समझा। तो उन्होंने भी क्या लिखा, मिश्कात शरीफ की मशहूर शरह मिरकात में लिखा है कि तलाक का ये हुक्म बतौर इस्तेहबाब फरमाया था, ठीक है। ये उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तलाक का हुक्म अपने बेटे को जो दिया था, या नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला को जो तलाक करने का हुक्म दिया था, तो ये बतौर इस्तेहबाब फरमाया था, ठीक है ना। इस्तेहबाब का मतलब क्या होता है कि जिसको के सजेशन के तौर पे कहा जाता है, कर लो तो अच्छा है, ना करो तो चलता है, गुना नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये इस्तेहबाबी हुक्म होता है, ठीक है ना। अब तक तो उम्मीद है कि सबको इस्तेहबाब का मतलब समझ में आ गया होगा, वजूबी हुक्म नहीं होता, इस्तेहबाबी हुक्म, ठीक है। तो फरमाते हैं कि तलाक का ये हुक्म बतौर इस्तेहबाब फरमाया था, अगर वहां तलाक देने का कोई और सबब था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म वजूबी था, ठीक है। यानी इस्तेहबाबी का मतलब क्या कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हारे बाप हैं, वो तुम्हें कह रहे हैं, ठीक है, तो तुम दे दो तो अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये होगा नबी अलैहिस्सलाम का इस्तेहबाबी हुक्म, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा कि अगर वहां पे तलाक देने का कोई और सबब था तब नबी अलैहिस्सलाम का यह हुक्म वजूबी था। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम जो तलाक देने का फरमा रहे थे तो वो इस वजह से फरमा रहे थे, यानी ये समझना आसान काम नहीं है, जरा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मसला तो ये है, ठीक है, कि अगर ये तलाक देने का हुक्म जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम बतौर वाजिब के दे रहे थे ना, तो उसकी वजह कोई ऐसी थी जो कि वाजिब वजह है, जो कि वाजिब वजह है। और वाजिब क्या चीज होती है कि बीवी की वजह से अगर इनके ईमान के अंदर खलल आ रहा था, इनके दीन के अंदर खलल आ रहा, दीन दीनी नुकसान था, ठीक है, ईमान के खराब होने का सबब बन रही थी बीवी, तब नबी अलैहिस्सलाम ने जो ये बात फरमाई थी ना, ये वजूबी कहलाएगी, क्योंकि वजह वजूबी है, इल्लत वजूबी है, ठीक है। और अगर ऐसी वजह नहीं थी कि ईमान की खराबी का सबब नहीं बन रहा था, बल्कि उमर अल्लाह जो है वो चाह रहे थे कि ये बस तलाक दे दें, तो फिर ये इस्तेहबाबी सबब बनेगा, ठीक है ना, कि भाई उमर जो है वो आखिर को तुम्हारे बाप हैं, और उमर जो है वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कैसे कैसे फजाइल बयान फरमाए, कि यानी ये बात को समझने वाले हैं, इनके पास इतना इल्म है, इतना फित है, इनके पास इतनी बात की समझ है कि जिस रास्ते से उम्र गुजर जाते हैं शैतान अपना रास्ता बदल देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि शैतान के लिए फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अल शैतान मिन अल्फ आबिद, ठीक है ना, कि जो एक फकीह होता है ना, एक बात को समझने वाला होता है ना, वो शैतान के ऊपर 1000 गुना ज्यादा भारी होता है एक आम इबादत करने वाले के मुकाबले में, ठीक है ना। तो रास्ता बदल के चला जाता है शैतान, यानी शैतान उमर रज़ियल्लाहु को अवॉइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु जो हैं वो फकीहों में से भी कोई 1000 गुना बड़े फकीह थे, यानी एक आम फकीह जो कि शैतान के ऊपर 1000 गुना ज्यादा भारी होता है, उमर रज़ियल्लाहु जो हैं वो फकीहों के भी बाप थे, ऐसे कहते हैं ना उर्दू जुबान के अंदर मुहावरतन कहते हैं ना, फकीहों के भी बाप थे, यानी फकीहों के भी इमाम थे वो उमर रज़ियल्लाहु, ठीक है ना। तो ऐसा फकीह अगर जो है वो अपने बेटे को कह रहा है ना, तो भाई घर के हालात जो है वो उनको पता है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे लेकिन आलिमुल गैब नहीं थे, आलिमुल गैब नहीं थे कि सब कुछ पता होता था कि किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी के बीवी ने क्या कहा, किसी के बेटे ने क्या कहा, किसी के जो है वो मामलात क्या चल रहे हैं, ये तो आलिमुल गैब को पता होता है ना ये सारी बातें। तो नबी अलैहिस्सलाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की फकाहत के ऊपर, जो के नॉर्मल फकाहत मल्टीप्लाई बाय 1000 रेस टू द पावर ऑफ 1000, उमर रज़ियल्लाहु की ऐसी फकाहत थी, ठीक है ना, वो उनकी फकाहत के ऊपर एतमाद करते हुए उनके बेटे को मशवरा दे रहे हैं कि मान लो अपने बाप की बात और उसको तलाक दे दो, वो किसी वजह से ही कह रहा होगा तुम्हें तलाक देने के, ठीक है। तो ये इस्तेहबाबी हुक्म बयान फरमाया, लेकिन वजूबी हुक्म के लिए फिर वो ऐसी इल्लत होनी चाहिए जो कि शरीयत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत बयान फरमाई है उसके अंदर वो वाजिब का दर्जा रखती हो, जैसे कि ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत करना ये वाजिब होता है, फर्ज होता है, ठीक है। तो बीवी अगर इस किस्म की है, अब बेटा जो है वो बीवी से राजी होने का, अब ये तो बच्चे थे ना, इनकी तो उम्र जो है वो 15 साल की कब हुई थी, जब गजवाए उहद, गालबन गजवाए उहद के मौके पर इनकी उम्र जो है वो 15 साल की हुई, तो इनको लड़ने की इजाजत मिली थी, ठीक है ना। तो अब उहद के बाद नबी अलैहिस्सलाम मजीद कितने साल रहे हैं मदीना, तो यानी दुनिया के अंदर 8 साल रहे, तो इनकी उम्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम उम्र भी पहुंची होगी तो 23 साल हो गई होगी, तो 20 22 साल का जो नौजवान होता है इसके तो जज्बात जो है वो अपने उरूज के ऊपर होते हैं, तो बीवी की जो है वो बाकी बातें इनको अच्छी लग रही होंगी, तो बस ये बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन तालिब इल्म थे, राइट, और तालिब इल्म का काम ये होता है कि वो गलती से सीखता है, ठीक है। वो कहने का मकसद क्या है कि ये तलाक दे देने का हुक्म जो है ना, ये इस्तेहबाबी हुक्म तो हो सकता है, ये वजूबी तौर पर नहीं होता औलाद के ऊपर, ठीक है, कि बस वो है ना, बस बाप ने कह दिया तलाक दे दो तलाक, माँ ने कह दिया तलाक दे दो तो तलाक, वरना तो जो है ना जहन्नुम में जलना पड़ेगा और जो है वो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, या ये कि माँ के कदम तले जो जन्नत है वो जन्नत से महरूम हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, बात समझ में आए। अच्छा, इन्होंने कुछ सवाल भी लिखे हैं, डायरेक्ट मैसेज में लिखे हैं, तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे कि के दीन तरजीह ना होने के बावजूद क्यों सियासतदान या वालिदैन के हाथों मैनिपुलेट होते हैं? ये पॉइंट समझ में नहीं आया जी। इतना आसान नहीं है पॉइंट समझ में आना, लेकिन कोशिश करी थी कि आसान बना करके आपको समझाएं। ठीक है, किसी और को समझ में आया कि, या जो आप लोगों को समझा रहा था कि कोई चीज़ आपके लिए अव्वल तरजीह ना हो फिर भी आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर भी आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो वैसे तो मैंने मिसालें भी दी थी, अब आपको क्यों समझ में नहीं आया? तो ज़रा मुश्किल तो ये है ना, मतलब आई एक्नॉलेज दिस कि हाँ ये बात मुश्किल है, लेकिन फिर मिसालें भी तो दी थी ना आपको। अरस्तु की मिसाल याद नहीं अभी जो थोड़ी देर पहले दी थी, अरस्तु, राइट? देखें एक और मिसाल चले आपको दे देते, ठीक है। कोई शख्स जो है ना, वो आप पार्क में जाएं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और आप किसी बेंच पे बैठ जाएं, सही है। अब बराबर वाली बेंच पे या कहीं दूर जो है ना, वो एक बेंच के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ हो और वो आदमी जो है ना, वो आपको घूरना शुरू कर दे, घूरना शुरू कर दे, ठीक है ना। अच्छा, बेशक आप बुरके में बैठी हुई होंगी, आप जो है वो आपका चेहरा भी उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आपकी तरफ जो है ना, वो नजरें गाड़ दे और आपको घूरना शुरू कर दे, बिल्कुल जो है ना वो, यानी आप उसकी आंखों को देख सकती हैं, वो पलक भी नहीं झपक रहा, ठीक है ना। तो अब बताएं जरा आपके ऊपर क्या जज्बात आएंगे आपके ऊपर, यानी आपकी कैफियत उस वक्त कैसी बनेगी? नॉट दैट कि आप उस बंदे को पसंद नहीं करती, जाहिर है वो कोई गुंडा किस्म का इंसान है और आप जो है वो बिल्कुल भी उसके उस घूरने को पसंद नहीं करती है, तो अब आपकी क्या कैफियत होगी, ठीक है ना। आपके ऊपर आप इनसिक्योर फील करेंगी, आप जो है ना वो ऐसे करेंगी कि जैसे कि आप बस भाग जाए यहां से ना, राइट। आप किसी तरीके से वो बंदा आपको देखना छोड़ दे, वो बंदा जहां से चला जाए या आप यहां से चले जाए, अब आपको क्या जरूरत है इतना इनसिक्योर फील होने की? वो कोई आपको मार तो नहीं रहा, राइट? वो क्या कर लेगा? आपके साथ आपकी पूरी फैमिली भी है, आपके हस्बैंड भी आपके साथ बैठे हुए होंगे, आपके साथ और भी आपके खानदान के मर्द भी होंगे, वो आपको बचा लेंगे, क्या जरूरत है आपको इनसिक्योर फील होने की? लेकिन आप होंगी इनसिक्योर फील, ठीक है ना। अच्छा, उस बंदे को आप जानती भी नहीं है, उस बंदे की कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप जो है वो किसी और से, अपने अपने किसी रिश्तेदार से कहें कि वो बंदा मुझे घूरे चला जा रहा है, तो क्यों घूर रहा है वो, मुझे बहुत, यानी मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो वो बंदा आपको समझाए, आपका जो रिश्तेदार है या आपके हस्बैंड है, वो आपको समझाएंगे कि भाई क्या क्या हैसियत क्या है उस बंदे की, आप क्यों उसको इतनी अहमियत दे रही हैं, घूर रहा है तो घूरने दें उसको, ठीक है ना। घूर रहा है तो चले भाई, औरतों का मामला है कि औरतों में जरा दूसरा भी मसला हो जाता है, चले कोई आप समझ लें कि आप मर्द होती और दूसरा मर्द आपको घूरना शुरू कर देता, ठीक है ना। तो अब आपके हस्बैंड आपको, सॉरी आप, मतलब कोई भी है, आप उससे कहें कि ये मुझे क्यों घूर रहा है, तो आप, तो वो कहेंगे ना कि भाई क्या है, तो इग्नोर करो यार उसको, क्या हैसियत है उस शख्स की, घूर रहा है तो घूरने दो, इग्नोर कर दो तुम उसको, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना, इवन दो दैट पर्सन हैज नो वैल्यू, उस बंदे की आपके जहन में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक नफ्सियाती दबाव पड़ेगा, बात समझ रही है। अब इस चीज को आप जो है ना, वो एरिस्टोटल की मिसाल के ऊपर लेके चले जाएं कि एरिस्टोटल की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी एरिस्टोटल के नाम को इस्तेमाल करके कोई आपको अब्यूज कर सकता है। उसी तरीके से अगरचे कि दीन की हमारे नजदीक नंबर वन प्रायोरिटी कोई नहीं है, हाँ थर्ड प्रायोरिटी है या फोर्थ प्रायोरिटी है या दसवीं प्रायोरिटी है, ठीक है, इतना दीन तो हम लोग खेलते ही रहते हैं इस तरह के दीन के साथ, ठीक है ना, तीसरी चौथी पांचवीं प्रायोरिटी वाला दीन, राइट। लेकिन फिर भी बार बार बोल बोल करके और जो है ना वो उसको बड़ा बयान करके और ये करके लोग आपके अब्यूज कर सकते, ठीक है ना। नंबर वन प्रायोरिटी होती ना अगर पाकिस्तानी कौम के सामने, तो वो इस दीन का इल्म हासिल करती, वो फराइज और वाजिबात को सीखती, राइट, यानी वो इल्म हासिल करती है ना भाई। देखो ना, दुनिया के लिए नंबर वन प्रायोरिटी है ना, तो दुनिया के लिए इल्म हासिल करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कैसे दुनिया के अंदर कामयाब होना है, कैसे जो है वो तौर तरीके सीखने हैं। सुबह के वक्त जो है ना आप देखेंगे, ओहो, मैं तो आजकल बच्चों को लेके जा रहा हूँ, आपको पता है बच्चों का आजकल हम पार्क में लेकर के जा रहे हैं सुबह के वक्त ना, तो यहाँ पर तो ज्यादा बच्चे नहीं नजर आते स्कूल जाते हुए, लेकिन पाकिस्तान में जाए ना आप, जरा कराची में जाए इस टाइम पे, पार्क चले जाए, हजारों की तादाद में बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं, एक से एक यूनिफॉर्म्स पहन पहन करके, राइट? सुबह सवेरे 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे लाइन लगी हुई होती है, रश लगा हुआ होता है ना? तो क्यों जा रहे होते हैं? इल्म हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं ना? किस चीज का इल्म हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं? दुनिया में कैसे कामयाबी हासिल करनी है, इसका इल्म हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं। तो दीन का इल्म हासिल करने के लिए कौन जा रहा होता है, राइट? जा भी रहे होते हैं तो अक्सर तो उनमें से बेचारे वही होते हैं जो कि जिनके अम्मा अब्बा को और कोई समझ में नहीं आता, तो वो मदरसे में डाल देते हैं अपने बच्चों को, राइट? वरना ये सीखने के लिए कि मैं अपने अल्लाह को कैसे राजी करूं, ये जो है मुझे मदारिस से पता चलेगा, असातिज़ा से और किताबों से पता चलेगा, मैं इस वजह से जो है वो दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ, कौन करता है इस तरह से? इमाम गजाली के जमाने में भी एक ही थे, इमाम गजाली ही थे ना जो कि ये वाला इल्म हासिल कर रहे थे, आजकल कौन करता है? ठीक है, तो प्रायोरिटी तो नहीं है ना दीन की, लेकिन फिर भी दीनी कार्ड इस्तेमाल हो जाता है। कैसे इस्तेमाल हो जाता है? वो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है जिस तरह से वो पार्क में बैठा हुआ बंदा जो है ना वो निगाहें गाड़ करके देख करके आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं ना, उसी तरीके से दीनी कार्ड भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से घरों के अंदर भी इसी तरह तरीके से ये तमाशे चल रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आपने क्या लिखा था, काफी देर हो गई तो इस वजह से आपका ये सवाल कहीं इररिलेवेंट ना हो गया, कि जैसे नमाज में कोताही, बाज हस्बैंड शादी के बाद नमाज अदा नहीं करते बीवी की वजह से। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। बच्चा ज्यादा बदमाश हो जाता है तब मदरसे में दाखिल कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही जब आपे से बाहर हो जाता है ना, तो उसको उठा करके मदरसे में दाखिल कर देते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों को भी बदमाश बनाए। ठीक है ना, मेरे सर से उतरे, मैंने तो उसका कुछ करना नहीं है, अपनी जिम्मेदारी मैंने तो पूरी नहीं करनी, जाओ मदरसे में जाओ और वहां जाकर के दूसरे बच्चों को भी खराब करो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, सारे ऐसे नहीं होते लेकिन ऐसा भी होता है। अच्छा, तो इमाम गजाली रहमतुल्ला अलैह अहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम होता है कि वालिद का हक मुकद्दम है, लेकिन शर्त यह है कि वालिद इस औरत को किसी गर्ज़ फासिद की वजह से बुरा ना समझता हो, जैसे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किसी गर्ज़ फासिद की वजह से उसे बुरा ना समझते। यानी गर्ज़ फासिद क्या होती है कि अपनी बस अनानियत की वजह से, अपनी जिद की वजह से जो है ना कि वो मेरे जैसे पकौड़े नहीं बनाती है, मेरे जैसे जो है ना वो इस किस्म के जो है वो चटपटे नहीं बनाती, ये गर्ज़ फासिद हो, ठीक है ना, या हमारी जो है ना वो हमारी रसूमात के ऊपर अमल नहीं करती, राइट? हमारी जो तहजीब जो हम लेकर के आए हैं, अपनी हिंदुओं से लेकर के आए हैं या जहाँ से भी लेकर के आए हैं, तो हमारी जो रस्म रिवाज है ना, ये बहू साहिबा जो है वो हमारे रस्म रिवाज के ऊपर अमल नहीं करती, इस वजह से जो है ना वो बेटे को कह रहे हैं कि तलाक दे दो इसको, तो उसको कहेंगे गर्ज़ फासिद की वजह से बेटे को तलाक देने के लिए कह रहे हैं अपनी बीवी को। ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु तआला ऐसे नहीं, वो तो ऐसे थे ना कि जो कि शैतान जो है वो रास्ता बदल करके चला जाता था, और फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। ठीक है, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला तो गर्ज़ फासिद की वजह से इसे बुरा नहीं समझते थे ना, वो तो गर्ज़ सादत की वजह से, जो सच्चा और सही गर्ज थी उसकी वजह से उसको तला यानी फारग करने के लिए कह रहे थे। ठीक है, तो हमारे मुआशरे में कौन होता है भाई ऐसा, किसी की मजाल है कि वो ऐसा हो सके जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, या इवन चलो उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसा ना भी बने, लेकिन कम अज कम जो है वो अपनी नफसानी शहवानी और अपने खानदानी रस्म व रिवाज को परे रख करके अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो अपने अपने घर के अंदर दीन का निज़ाम, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत को लेके चलने चलना चाहता हो और उसके लिए हर चीज़ को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो, कौन है हमारे, कौन ऐसे वालदैन होते हैं आजकल, राइट? कोई होते हैं तो फिर उनका मुकाम होगा, फिर वो अपने शेख के पास जाएं और देखेंगे ये शेख साहब जो है वो उनकी इस बात को फिर कैसे हैंडल करते हैं, कैसे जो है वो डील करते हैं। ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु उन्होंने भी अपने बेटे को डंडे से तो नहीं मारा ना, तलाक दो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तलाक दो वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा, या मैं तुम्हें जो है वो जंजीरों से बांध दूंगा, ये तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं किया ना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, शेख के पास गए, हालांकि कितने कितने जलाली किस्म के थे वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, राइट? नबी अलैहिस्सलाम से बात बात पे आया, अल्लाह के नबी, मुझे आप इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, ये तो मुनाफिक हो गया, ये तो काफिर हो गया, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, राइट? बेटे के मामले क्या किया, गर्दन उड़ा दी बेटे की। गर्दन उड़ाना तो दूर की बात, बेटे को धमकी भी नहीं दी गर्दन उड़ाने की, बल्कि क्या किया, शेख के पास गए, राइट, जो कि उस वक्त अल्लाह के नबी ही शेख थे। ठीक है, तो आज हम करते हैं इस तरीके से। अगर ठीक है आप जो है वो गर्ज़ फासिद ना भी समझते हो, बल्कि आप जो है वो हक पे अपने आप को समझते हो, लेकिन अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास, अपने से ज्यादा तकवा वाले के पास जाते हैं अपने घर के मामला को लेकर के, कि भाई ये ऐसा मामला है, मुझे आप बताइए कि इसमें सच क्या है, हक क्या है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहरहाल क्लास का वक्त जो है वो ओवर हो चुका है। अब जो है वो आपकी दूसरी क्लास जो कि फिर वो हुकूक के ही ऊपर है, तो बस इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और दूसरी क्लास भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। जब तक के लिए आप सब्र बर्दाश्त के साथ कुछ इल्म हासिल कर लें, और नियत ये होनी चाहिए कि भाई इल्म बराए इल्म खाली जो है ना वो अपनी मालूम का जखीरा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके ऊपर अमल की इखलास के साथ कोशिश करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा करके हमारी अब तक की तमाम गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बनने की जैसा कि वो चाहते हैं हमें बनाना तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।